उपदेशक की पुस्तक को अध्ययन कर रहे हैं, दो बातें हमारे सामने आनी है। प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले लगभग 800 साल पूर्व की ये घटना जो सुलेमान का है, 800-900 साल पूर्व की घटना है, और उस समय सुलेमान लिख रहा है। अभी लगभग 3000 साल हो गए हैं, 3000 साल पहले। अब प्रभु यीशु मसीह आ गए हैं और प्रभु यीशु मसीह ने अपने उद्धार के कार्य को पूरा किया है। सो तब की परिस्थिति में, तब के दिमाग में, तब के ध्यान में फ़र्क है और अब के ध्यान में फ़र्क है। सो हम जब परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें तब और अब हमेशा इस बात को सोचना है। तो हम केवल उसी परिस्थिति में रह करके जो तब की परिस्थिति थी, जो सुलेमान लिख रहा है, उसी में अपने आप को एक सीमितता में नहीं बांध सकते। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि परमेश्वर ने हमें अब कई कदम आगे बढ़ा दिया है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया है। वो मारा गया, गाड़ा गया, उसने हमें एक अच्छा और जीवित सत्य सूक्ष्म चार दिया है, ताकि हम उस पर विश्वास करें और अपने पापों से छुटकारा पा करके, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके, उसे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करके, उसे नया जन्म पाएँ और उसकी संतान होकर के एक नया जीवन को हम आरंभ कर सकें। और वो सुसमाचार हमारे जीवन में न केवल जो अतीत में कार्यकारी हुआ, लेकिन वो वर्तमान में भी कार्य होना है। सो अब जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, तो इस समय हमारे जीवन में वचन किस तरह से बात कर रहा है वो हमें समझना है। सुलेमान ने क्या परिस्थिति में लिखा है, लेकिन आज वो किस परिस्थिति में, और क्या कुछ मैं आज की परिस्थिति में इससे सीख सकता हूँ या सीख सकती हूँ। सो हमेशा इस बात को देखना है। जब भी हम पुराने नियम को पढ़ते हैं, यद्यपि ये सच है कि पुराने नियम में सुसमाचार है, हम कई स्थलों में देखते हैं, क्योंकि हमें हमेशा पुराना नियम आगे की ओर दिखाता है, आगे की ओर दिखाता है। और प्रभु का धन्यवाद हो कि हम आगे की ओर, अर्थात यीशु की ओर देखते हुए आगे बढ़ सकते हैं। सो आज जो हम छठे अध्याय को देखने जा रहे हैं, एक ही बात बार बार घूम घूम के कही जा रही है। जैसे आपने कई बार वो कुछ किताबें देखी होंगी, और उन किताबें में आपने देखा होगा स्पायरल, जो घूम घाम के तार से वो पुस्तक बनी रहती है, घुमा घुमा घूम घूम के। सो ये सुलेमान भी घूम घूम के एक ही विचार को कई तरह से प्रकट कर रहा है, एक ही विचार को कई तरह से प्रकट कर रहा है। उसके दिमाग में ये है, हमने उस बात को देखा था, उसके दिमाग में ये है कि सूर्य से नीचे के नीचे पृथ्वी कवर जो कुछ भी है, सब व्यर्थ ही व्यर्थ ही व्यर्थ है। अर्थात वो ये कहना नहीं चाह रहा कि सब कुछ व्यर्थ है, लेकिन उसका कहने का मतलब परमेश्वर से हटकर जो कुछ भी हम करते हैं वो सब व्यर्थ है। परमेश्वर के बिना हमारा जीवन व्यर्थ है, परमेश्वर के बिना हमारा परिश्रम व्यर्थ है, परमेश्वर के बिना हमारी बुद्धि व्यर्थ है, परमेश्वर के बिना हमारी क्रियाएं व्यर्थ हैं। और इसलिए मनुष्य को परमेश्वर का खोजी होना है। और इसीलिए सुलेमान जब अपने अंतिम इस सबोदेश के अंतिम अध्याय में आता है, तो वो एक ही बात कहता है कि और अंत की बात ही है, और अंत की बात ही है। जब हम उस पर जाएंगे तब हम उस पर विचार करेंगे। तो बार 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 वही बात धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और उस समय जैसे मैंने हम पहले देख चुके हैं कि इस समय उसका जो संबंध परमेश्वर के साथ होना था वो शायद कुछ टूटा हुआ है, टूटा हुआ है। उसने इतना अधिक खोज कर ली है और वो इतनी अधिक उस महिलाएं या स्त्रियां उसके पास हो गई हैं जिन्होंने उसके मस्तिष्क को बहका दिया है, और इसलिए वो सब कुछ जो बात कर रहा है वो केवल अपनी बुद्धि के साथ बात कर रहा है। बार बार परमेश्वर की ओर जाता है, फिर अपने ऊपर आता है, फिर परमेश्वर की ओर जाता है, फिर बात। तो उसके जीवन में एक स्ट्रगल है, संघर्ष है, संघर्ष है। और वो देख रहा है कि इस पृथ्वी पर क्या कुछ, उसने बहुत अधिक शोध की है। जब पाँचवा अध्याय हमने पिछली बार ख़त्म करा था, तो 18, 19, 20 में हमने तीन आशीषों को देखा था, और उन तीन आशीषों के साथ हमने समाप्त करा था। 18 पद में सच्चे आनंद की आशीष के बारे में था कि सच्चा आनंद किस प्रकार मनुष्य को परमेश्वर देता है। 19 पद में परिश्रम की फल की आशीष के बारे में देता था, परमेश्वर किस प्रकार से मनुष्य को उसके परिश्रम का फल देता है। 20 पद में सच्ची संतुष्टि की आशीष को देखा था कि किस प्रकार से परमेश्वर सच्ची संतुष्टि को प्रदान करता है। तो ये तीन आशयों के साथ हमने उस पांचवें अध्याय को समाप्त किया था। आज 6 अध्याय में जब हम जाते हैं, तो आज 6 अध्याय कुछ सुलेमान अपने जीवन में ऐसे संघर्ष के साथ साथ कुछ लग रहा है कि कुछ निराश भी है, कुछ निराश भी है, क्योंकि कई सारे विचारों ने उसको घेर रखा है, कई सारी सोच ने उसको घेर रखा है, और वो देख के चारों ओर देख करके थोड़ा विचलित भी है, निराश है, विचलित है, और इसलिए वो सारी बातों कह रहा है। सुलेमान संसार का सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति था, उसके बराबर कोई भी बुद्धिमान नहीं हुआ, सबसे अधिक बुद्धिमान वही था, और उसने जाना। और इसलिए जब आज हम देखते हैं तो ये वो एक बात को देख कर आया है, जीवन किसी भी प्रकार के अन्याय से प्रसन्न नहीं होता, कोई भी प्रकार का अन्याय। वो देख रहा है कि इस पृथ्वी के ऊपर स्वर के नीचे कैसे अन्याय पाया जाता है, और उस अन्याय को देख करके वो थोड़ा चिंतित है, विचलित है, निराश है, परेशान है कि किस तरह से लोग अन्याय के साथ जीवन को व्यतीत करते हैं। और सच में परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जब हम नए नियम में आते हैं तो प्रभु ने हमें इस अन्याय से आज़ाद किया है, और अगर जो एक विश्वासी जिसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह अपने उद्धार का कार्य करता है, उस बात को समझता है कि अन्याय क्या है, अन्याय क्या है, और वो इस बात से सावधान रहता है वो किसी के प्रति अन्याय ना करे। कई बार लोग नहीं समझते, कई बार लोग अपने स्वार्थ में होकर किसी चीज में आ जाते हैं, लेकिन वो दूसरे पहलू को नहीं समझते कि ये सच मुझे क्या ये न्याय है या अन्याय है, उसको नहीं समझते, और इसलिए इस तरह से बातों को सोचते हुए आगे बढ़ता है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक प्रश्न है जो जिस पर मुझे और आपको विचार, जब लोग आप पर या मुझ पर झूठा दोषारोपण करते हैं जो काम आपने किया ही नहीं फिर भी आप पर दोष लगाते हैं और आप अपने जीवन को न्यायपूर्ण नहीं पाते, तो ऐसी परिस्थिति में आप कैसे प्रतिउत्तर देते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है? अर्थात जब लोग आपके ऊपर झूठा दोषारोपण लगा रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते मुझे किसी ने कोई बात बताई और मैं किसी बात कर रहा था, और तब मुझे बताया कि किसी ने कि आपके लिए ऐसा कहा गया, मुझे बहुत दुख हुआ, इसलिए परेशानी हुई कि मैं जिस व्यक्ति से कहा गया उस व्यक्ति से कई समय से मिला नहीं, मैंने फ़ोन पर भी बात नहीं करी, मिला भी नहीं, लेकिन फिर भी मेरे लिए कहा गया, ऐसा क्या? सो कई बार मुझको भी आपके साथ भी हमें और आपको इस संसार में इन तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, तो ऐसे में आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है, क्या आप प्रत्युत्तर देते हैं? क्या पागल हो जाते हैं? मेरे को ऐसा कहा गया, मेरे को ऐसा कह गया, मैं नहीं छोड़ूंगा, ये क्यों कहा ये, और पागल होते हैं। क्या आप निराश हो जाते हैं, निराश होकर बैठ जाते हैं कि मैंने तो कुछ कहा ही नहीं फिर भी मेरे लिए ऐसा कर रहा है, निराश हो जाते हैं। क्या आपके अंदर कड़वाहट बढ़ जाती है उस व्यक्ति के लिए, उसने ऐसा कहा है इसलिए उसके लिए अब मैं उसको देखना नहीं चाहता, मैं उससे बात करना नहीं चाहता, मैं उससे मिलना चाहता, क्या कड़वाहट बढ़ जाती है? क्या आप उससे बदला लेने के लिए का प्रयास करते हैं कि नहीं मुझे उससे बदला लेना अवश्य है, जरूर है? और इस रीति से क्या हम अपने विश्वास को खोने लगते हैं, जो विश्वास हमने प्रभु यीशु मसीह किया है, जिस पर हम प्रभु यीशु मसीह पर निर्भर हैं, क्योंकि सब कुछ को वही निरंतर करने वाला है, उसने हमें देने हम, तो क्या है हमारी क्या प्रतिक्रिया होती है, हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं? यदि आज हम ये सीख सकें आज के संदेश से, यदि आज हम ये सीख सकें कि एक विश्वासियों के नाते इस अन्यायपूर्ण व्यवहार के मध्य हम इस विश्वासयोग्यता के साथ मसीह के वचन के आधार पर किस तरह इसका सामना कर सकते हैं, तो हमारी प्रतिक्रियाओं को जो वचन से विपरीत हैं उनको भी हम नियंत्रित कर सकते हैं। आज के वचन से अगर हम ये सीख लें कि जब लोग हमारे बारे में झूठा दोषारोपण लगाते हैं, अत्याचार करते हैं, या हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जिसके कारण हम निराश होते हैं, जिसके कारण दुखी होते हैं, जिसके कारण हताश होते हैं, जिसके कारण हमारे अंदर कड़वाहट उत्पन्न होती है, जिसके कारण शायद हम उस व्यक्ति से बात नहीं करना मांगते हैं, ये प्रतिक्रिया होती है, ये हमारा मनुष्य मानवीय व्यवहार स्वभाव है, ये स्वभाव हमारे जीवन में आता है। और अगर आज हम ये सीख लें कि हम अपने विश्वास को नहीं खोएंगे, हम अपनी विश्वासयोग्यता को नहीं खोएंगे, बल्कि और अधिक हम परमेश्वर में मजबूत होकर के अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में छोड़ करके हम अपने अन्यायपूर्ण जो हमारे लिए आ रहा है व्यवहार उसको हम न्यायपूर्ण परमेश्वर के हाथों में छोड़ेंगे ताकि परमेश्वर उसका न्याय करे। सो मैंने पहले कहा था कि सबोपदेशक की पुस्तक आज से लगभग 3000 साल पहले इसका वर्णन है। अब परिस्थिति बदली हुई है, अब प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके साथ है। अब इस संसार में एक दिन था जब हम पाप में थे, पाप के साथ चल रहे थे, पाप में जीवन व्यतीत कर रहे थे और हमारा पाप का स्वभाव था और हम तुरंत पाप के स्वभाव के अनुसार व्यवहार करते थे। परंतु एक दिन प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके जीवन में अपने उद्धार के कार्य किया। हमने इस बात को देख लिया, हम पापी हैं और पाप की बाइबल कहती है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, जो प्राणी पाप करे उन्हें निश्चय मर जाएगा और पाप का परिणाम तो सच में अनंतकाल की मृत्यु और दंड है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे और आपसे प्रेम किया और वो स्वयं परमेश्वर मनुष्य बनकर पृथ्वी पर आ गया, मेरे और आपके लिए क्रूस पर वो बलिदान हुआ, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जुटा, आज सिंहासन पर विराजमान है और फिर से वो आएगा ताकि हर एक विश्वास करने वालों को अपने साथ ले जाए। अब मेरा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर है, मैंने उसको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया, मैंने उसे पापों की क्षमा को प्राप्त किया और अब मेरी आशा उस प्रभु यीशु मसीह पर है जो फिर आएगा और मुझे अपने साथ ले जाएगा। यदि मेरा ये जीवन है, यदि ये मेरा जीवन है, तो अब मेरी सोच में, हमारे विचारों में, हमारे व्यवहारों में परिवर्तन आएगा। तब हम उस 3000 साल पहले सुलेमान के विचारों में जीवन व्यतीत करेंगे, लेकिन अब हम उस विचार में जीवन व्यतीत करेंगे जो प्रभु यीशु मसीह के वचन के आधार पर आज वर्तमान में परमेश्वर का वचन सिखाता है। और इसलिए मुझे और आपको इस तरह से सावधान रहना है और हमें, मुझे और आपको प्रार्थना भी करनी है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे हृदय को, मेरे मस्तिष्क को, मेरे सोच को, मेरे विचारों को प्रतिदिन आप अपने नियंत्रण में रखिए। मसीह जीवन सरल जीवन नहीं है, मसीह जीवन सरल। अगर मैं किसी से पूछता हूँ कि आपका जीवन, मसीह जीवन कैसे चला है, वो कोई परेशानी नहीं ब्रदर, कोई परेशानी नहीं अंकल, इसका मतलब आप गलत बोल रहे हैं। हमें हर पल कुछ ना कुछ संघर्ष का सामना करना पड़ता है, कई सारे क्षेत्र हैं। जब मैं प्रभु में आया था उसके बाद मैं एचएल में था, उस समय भी मुझे सामना करना पड़ता था, ड्यूटी जाता था, मुझे मालूम है किन किन बातों का मैंने सामना करा। आज परिस्थिति दूसरी है, आज मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूँ, प्रभु के लोगों के बीच में, फिर भी आज भी सामना करना पड़ता है, आज भी सामना करना पड़ता है। आप कहीं भी रहते हैं, आपको सामना करना पड़ता है। कई बार आपके शासक, आपके अधिकारी प्रभु को नहीं जानते, वो आपके साथ अनुचित व्यवहार करते हैं, तब भी आपको सामना करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन हमें समझना है। तो जब हम 6 अध्याय में आते हैं तो इस 6 अध्याय को हम कुछ भागों में बांट सकते हैं। सुलेमान के निराशा के कई कारण हैं, निराशा के कई कारण हैं। पहला, दूसरा पद, व्यक्ति के पास सब कुछ बहुतायत से होने के बाद भी वो उस संपत्ति का आनंद नहीं उठा पाता। उसके पास बहुत कुछ है, धन संपत्ति है, लेकिन वो आनंद नहीं उठा पाता। परंतु क्या होता है, कोई परदेशी है जो उसके संपत्ति का, उसके धन का भोग करता है। ये विचार उसके सामने, क्यों ऐसा है, ये सच है। कई बार कई प्रश्न आते हैं, है? लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि कुछ समय ऐसा है जो हमें प्रश्न में घेर करके हम चलेंगे, घिर जाएंगे। अय्यूब हमारे लिए सबसे अच्छा उदाहरण है। अय्यूब के साथ बहुत कुछ घटा है, अय्यूब की पत्नी ने छोड़ा, अय्यूब के बाल बच्चे समाप्त हो गए, अय्यूब की जितनी धन संपत्ति थी वो समाप्त हो गई। अय्यूब की कहानी को जानते हैं आप, क्या स्थिति हो गई, उसके मित्र भी छोड़ के चले गए, शरीर भी उसका बिल्कुल जवाब दे रहा है, लेकिन उसने परमेश्वर का इनकार नहीं करा। परमेश्वर, उसने कहा मैं नंगा आया, माँ के पेट से नंगा आया और नंगा लौट जाऊंगा, माँ के पेट से नंगा आया और नंगा लौट जाऊंगा। उसने कहा जिस परमेश्वर के हाथ से हम सुख लेते हैं, क्या उस परमेश्वर के हाथ से हम दुख ना लें। उसने हमेशा अपनी दृष्टि को परमेश्वर पर लगा के रखा। यद्यपि संघर्ष उसके जीवन में बना रहा, उतार चढ़ाव रहा, उसके मित्र उसको सलाह दे रहे हैं और संघर्ष कर रहा है बहुत कुछ बातों में, लेकिन फिर भी उसके अंदर जो डीप डाउन उसका विवेक है, उसका कॉन्शियस है, उसके अंदर परमेश्वर दृढ़ता से वास करता था, दृढ़ता से वास करता था, और इसलिए उन सारी प्रश्नों का वो एक दूसरी बुद्धि समझ से सामना कर सका। और इसी तरह से सुलेमान देख के ताजुब कर रहा है कि धन संपत्ति एक व्यक्ति के पास है, सब कुछ जमा करता है, लेकिन फिर भी उसका आनंद नहीं उठाता, कोई दूसरा उसका। तीसरा, चौथा पद, परिश्रम वो करता है परंतु लाभ किसी और को मिलता है। एक जन परिश्रम कर रहा है परंतु उसका लाभ उस परिश्रम करने वालों नहीं मिल रहा, किसी दूसरे को मिल रहा है। तीसरी बात, तीसरे चौथे पद में परिश्रम कोई और करता है परंतु लाभ किसी और को। पाँच छः सात में उसने किसी जीवन में निवेश नहीं किया। वो व्यक्ति जो संसार में जिसके पास बहुत कुछ है उसने किसी भी व्यक्ति के जीवन में निवेश नहीं किया और ना परमेश्वर के कार्यों के लिए खर्च किया। उसने अब अपने बारे में सोचा है लेकिन किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचा। आठवां नवां पद, स्वयं को बुद्धिमान तो जाना परंतु उसके कार्य किसी प्रकार से मूर्खों से कम नहीं रहे। अपने आप को वो बुद्धिमान जानता रहा, कितने लोग ऐसे हैं, लेकिन उनके कार्य किसी प्रकार से मूर्ख से कम नहीं रहे। कई लोग अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं लेकिन उनकी भाषा, बोल भाषा, उनके कार्य दिखाती है बुद्धिमान नहीं है, मूर्ख हैं, और वो अपनी हानि उठा देते कई बार। पर ऐसा क्यों है? 10 से 12 पद, परमेश्वर की सार्वभौमिकता पर हम विचार करते हैं। परमेश्वर सब भौमिक परमेश्वर है और परमेश्वर क्या चाहता है। हम 5 भागों में इस पुस्तक का विभाजन करते हैं। शीर्षक, जीवन किसी प्रकार से के अन्याय से प्रसन्न नहीं होता। कोई नहीं चाहता कि मेरे साथ अन्याय किया जाए, कोई नहीं चाहता। आप एक गरीब से बात करिए, सड़क पर रिक्शे वाले से, कई बार रिक्शे वाले बेचारे कितना अन्याय का सामना करना पड़ता है। 3 जन लग गए कि रिक्शे पे और चला के ले गए उसको, देने चाहिए उसको 50 रुपये, दे रहे 30 रुपये। उसे कह रहे बाबू जी कम है पैसा, 3 जन आप लोग आए भारी भारी को मैं खींच के लाया हूँ, चल ले रहा है ले नहीं तो भग जा। वो अन्याय है उसके लिए, ये दुख की बात है। उसको क्या करना चाहिए? उसको ईमानदार से 50 रुपये देने चाहिए, समझ। सो कई बार मजदूर को हम रखते हैं, दिन भर काम कराते हैं, मजदूरी काट लेते हैं। मैंने शुरू से एक सिद्धांत बनाया हुआ है और मेरी सेवा में प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की दया में हमने बहुत कंस्ट्रक्शन वर्क करा। हमने जो मजदूरी ठहराई है उससे कभी मजदूर की मजदूरी को कम नहीं किया। कभी वो छुट्टी पे गए, कभी कुछ हुआ, कभी कुछ हुआ, कुछ भी हुआ कोई बात नहीं, सामान में जरूर पैसा कम करा हमने, दुकान में जाके सामान में जरूर पैसा कम करा है, लेकिन मजदूर की मजदूरी को नहीं कम करा। क्योंकि हम सीधे सीधे अन्याय कर रहे हैं, हमें सावधान रहना है, हमारा हृदय हमारा सोच बदलना है। सुनिए, अब आइए हम एक एक करके इस पर विचार करेंगे। 6 अध्याय उसके पहले दूसरे पद, एक बुराई है सूर्य के नीचे पृथ्वी के ऊपर, देखा बार बार वो कहता है सूर्य के नीचे, ये मनुष्य में व्याप्त है। वो कह रहा है ये बुराई जो है, जो इसको मैंने देखा है, ये मनुष्य में व्याप्त है, मनुष्य पाई जाती है। क्या ऐसा भी मनुष्य है जिसे परमेश्वर ने धन संपत्ति और प्रतिष्ठा इतनी दी है कि उसको मन चाहे किसी वस्तु का अभाव नहीं होता, परंतु परमेश्वर ने उसको उसमें से खाने की सामर्थ्य नहीं दी है। क्या मतलब है? देने वाला सब कुछ परमेश्वर है। अगर परमेश्वर देने वाला है तो परमेश्वर उसके लिए आनंद उठाने की सामर्थ्य देने वाला भी परमेश्वर। अगर परमेश्वर ये ना करे, ये अनुग्रह ना करे, उसके परमेश्वर सामर्थ्य ना दे, तो उसकी धन संपत्ति कितना भी वो नहीं खा पाएगा। कितने लोगों को देखा गया, कितने लोगों हम जानते हैं, कितने लोग है ना। सो क्यों ऐसा है? और कह रहा है परंतु परमेश्वर ने उसको उसके खाने की सामर्थ्य नहीं दी क्योंकि उनका उपभोग तो कोई अन्य व्यक्ति करता है, ये व्यर्थता तथा भयानक दुख है। ये दुख की बात है। सुलेमान कह रहा है कि मैंने इस बात को देखा, जिस बात को देख करके मैं दुखी हुआ, इसीलिए मैंने कहा कि 6 अध्याय वो एक बहुत बड़ी निराशा में, व्याकुलता में, बेचैनी में लिख रहा है। अभी तक 5वें अध्याय में कुछ और सोच के लिख रहा था, लेकिन 6 अध्याय में वो एक बहुत ही उसके संघर्ष है उसके सामने। ऐसा क्यों है? क्या ये अन्याय है? उसके सामने ये आज्ञा और देखेंगे। लेकिन क्या कहना है? परमेश्वर अगर देने वाला है तो परमेश्वर उसके खाने के का आनंद भी देने वाला है परमेश्वर। अर्थात मनुष्य अपनी शक्ति से, मनुष्य अपने सामर्थ्य से, मनुष्य अपने बल से, मनुष्य अपने धन से ना तो आनंद प्राप्त कर सकता है, ना स्वास्थ्य प्राप्त कर सकता है, ना बुद्धि प्राप्त कर सकता है, ना शक्ति प्राप्त कर सकता है, ना सुरक्षा प्राप्त कर सकता है। मनुष्य अपने आप से कुछ नहीं प्राप्त कर सकता। दूसरे रूप में तुम जो परमेश्वर को नहीं जानते या परमेश्वर से दूर रहना चाहते हो, परमेश्वर को अलग रखना चाहते हो, तुम ये नहीं समझते कि बिना परमेश्वर के तुम्हारा जीवन बेकार है, बिना परमेश्वर के तुम किसी चीज का भी लाभ नहीं प्राप्त कर सकते। सुलेमान इस बात को कहना चाह रहा है। और मेरे प्रियो, बार 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 हमें इस बात को समझना है। अब जब परमेश्वर की बात होती है तो बाइबल स्पष्ट कहती है, पृथ्वी के ऊपर स्वर्ग के नीचे कोई और दूसरा नाम नहीं दिया गया जिससे हम उद्धार पा सकें, केवल एक नाम है, प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह, हम ये गाते हैं, यीशु प्रभु यीशु मसीह क्या का नाम है सारी जमीन पे जिससे हम पाते उद्धार ना। हम उस कोरस को गाते हैं, उस कोरस को भी गाते हैं कि गांव गांव में, देश देश में, जगह जगह में गूंज रहा है यीशु का नाम। कई गीतों को इस तरह से गाते हैं, प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह का नाम दिन पर दिन फैलता चला जाएगा, चाहे कोई कितना प्रयास करे, कितना कोई प्रयास करे, चाहे कोई कोशिश करे, शुरू से प्रयास रहा या आज नहीं ना, पुराने नियम से जब परमेश्वर की व्यवस्था लिखवाई जा रही थी उस समय से परमेश्वर के विरोधियों ने व्यवस्था पर विचार किया कि व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाए, पुस्तकों को समाप्त किया जाए। उसके बाद जब आगे चल करके प्रभु यीशु मसीह आए, तब से भी और ये प्रयास बढ़ता चला जाएगा, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को दबाने नहीं पाएंगे। परिणाम क्या हो रहा है? परिणाम ये हो रहा है कि देश देश में, जाति जाति में, क्यों लिखा हुआ है, और प्रभु यीशु मसीह का आना का अंतिम चिन्ह यह है कि हर एक जन के बीच में, हर एक जाति के बीच में, हर एक भाषा के बीच में सुसमाचार पहुंचाया जाएगा। आजकल ये तकनीकी युग आ गया, और इस तकनीकी युग से कहां कहां परमेश्वर का वचन नहीं पहुंच रहा है, गली गुचे नाले पार पहाड़ों में, कहां में, जहां पर भी लोगों पास ये माचिस का डिब्बा हाथ में आ, वो परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। तो कोई भी चीज खोज की जाती है, बुद्धि तो परमेश्वर ही देता है खोज करने की, कोई भी देता है तो उसको परमेश्वर किस रीति से, लोग दुरुपयोग करते हैं, लेकिन परमेश्वर कहीं ना कहीं उसके लिए, उसके द्वारा अपने आप के कार्य को भी पूरा करता है। ये अद्भुत चीज है, अद्भुत बात है। अर्थात फिर सब बात है, सुलेमान जो कह रहा है और उसका तात्पर्य यह है, आज मेरे और आपके लिए क्या है, मेरे और आपके लिए है कि हमें सच्चे सुख का देने वाला, सच्चे आनंद का देने वाला परमेश्वर है, और हमारे धन का, हमारे सब कुछ का, हमारे संपन्नता का, सब कुछ का आनंद उठाने का देने वाला भी परमेश्वर है। कितने लोग ऐसे हैं जो धन बैंक में जमा करते जाते हैं, खाते नहीं हैं, पहनते नहीं हैं, किसी दूसरे को नहीं देते, कुछ नहीं करते, लेकिन क्या होता होगा, आगे चल के क्या कहता है, वो क्या कहता है कि ये उनका उपभोग तो कोई अन्य व्यक्ति करता है, मर जाते हैं किसी दूसरे के लिए छोड़ जाते हैं, मर जाते हैं किसी। कितने लोग ऐसे हो, हम रोज कहीं न्यूज़ में पढ़ते हैं, कहीं और देखते हैं, दोस्त में देखते हैं, अपने आस पड़ोस पे देखते हैं, बहुत सारे लोग हैं, इसकी मुझे ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, हम संसार में रहते हैं। सो परमेश्वर जो है, वो परमेश्वर हमें ना केवल देने वाला है कि वस्तुओं का, लेकिन उसके साथ साथ उसका भोग का, उसका आनंद का उठाने वाला, देने वाला भी है। लेकिन यदि हम परमेश्वर से अलग होकर के, उससे वचन के सिद्धांतों से अलग होकर अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, तो शायद हम कंजूस हो जाएंगे, शायद हम इतनी ऐसी अवस्था में पहुंच जाएंगे जहां पर हम धन को है तो, लेकिन ना तो अपने लिए खर्च कर पाएंगे, ना किसी और खर्च कर पाएंगे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपने लिए ऐसी जगह धन मत जमा करना जहां कीड़े और काई खा जाते हैं, परंतु वहां जमा करना जहां स्वर्ग में, जहां कोई ना कीड़ा खाएगा ना कोई और खाएगा। सो परमेश्वर का वचन बहुत ही अद्भुत और सच्चा है। आगे चल करके तीसरे चौथे पद में देख लो, यदि कोई व्यक्ति 100 संतान, सो आगे बढ़ेंगे हम, पहले की बात, अब दूसरी बात, तीसरा और चौथा पद, परिश्रम वो करता है परंतु लाभ कोई और उठाता है। कह रहा है यदि कोई व्यक्ति के पास 100 संतान उत्पन्न थे, एक नहीं, दो नहीं, 100 तो संतान उत्पन्न करें, और वो बहुत वर्षों तक जीवित रहे, तथापि उसके आयु के दिन कितने ही अधिक हो जाएं, पर यदि उसका प्राण उत्तम पदार्थों से संतुष्ट ना हो तथा उसको उचित दफन भी ना मिले तो मैं कहता हूं कि उससे अच्छा गर्भपात का बच्चा है, क्योंकि वो व्यर्थ आता तथा अंधकार में विलीन हो जाता है और उसका नाम अंधकार में छिप जाता है। अब सोचिए, अब 100 संतान उत्पन्न करने के लिए उसकी आयु कुछ तो होगी, सबसे बड़ी आयु जो सबसे लंबी जो आयु है बाइबल में जो दी गई है वो 900 सबसे लंबी आयु, उत्पत्ति उसका 5वां अध्याय, मथुशलह, इसका नाम मथुशलह है, 5 अध्याय और उसका 27 पद, मथुशलह की कुल आयु 969 वर्ष की हुई, 969 सबसे लंबी आयु का व्यक्ति ये है जो इस संसार में जीवित रहा है। इसकी भी 100 संतानें नहीं थी, इसकी भी 100 संतानें नहीं थी, है ना। पहले आयु जो थी बढ़ती थी, बड़ी रहती, फिर धीरे धीरे घटती गई और फिर बाद में आयु जो ठहरा दी गई, दाऊद कहता है भजन संहिता में कि मनुष्य की आयु परमेश्वर ने 70 वर्ष की ठहराई है, 70 वर्ष, बलपूर्वक 80 वर्ष, अर्थात मैं बोलता हूँ कि ग्रेस पीरियड है। अब हम ग्रेस पीरियड में चल रहे हैं, 70 के बाद हम जो है वो ग्रेस पीरियड में है, प्रभु का अनुग्रह है, तो वो परमेश्वर के अनुग्रह से जो आयु जुड़ती आती है। ज़रूर कुछ लोग ज़्यादा जीते हैं, वो ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं, लेकिन जो एक ठहराई गई आयु है वो है। पर वो यहाँ पर कह रहा है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, मान लो वो एक उदाहरण के रूप में दे रहा है और उदाहरण के रूप में बात कर रहा है कि वो 100 संतान उत्पन्न करे, बहुत वर्ष जीवित रहे, तथापि उसकी आयु के दिन कितने अधिक हो जाएं, पर यदि उसका प्राण उत्तम पदार्थों से संतुष्ट ना हो। ये चीजें बार बार संतुष्टि बात कर, संसार उसे संतुष्ट नहीं करता, मनुष्य को संसार संतुष्ट नहीं करता, हमने इसने इसको पहले भी देखा है, ये सब कुछ हो जाए तो ऐसी दशा में वो कह रहा क्या है, हो जाए, पर यदि उसका प्राण उत्तम पदार्थ संतुष्ट ना और उचित दफन भी, यहां तक उसकी स्थिति ऐसी है कि उसको दफनाने के भी कोई लोग ना हो। अभी कोरोना के समय में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी हैं जहां पर लोगों ने किस रीति से लोगों के साथ व्यवहार किया है। अभी हम टीवी में देख रहे थे, 2 जन अपने घर के करीबी व्यक्ति को, उनको ना तो वो दहन क्रिया कर पाए ना कुछ, वो चुपचाप से नदी में फेंक रहे थे, ऐसी स्थिति आई है। कुछ लोगों की मृत्यु हो गई, सरकार ने 10-20 लोगों से ज़्यादा जाने की अनुमति नहीं दी, मतलब परिस्थिति देखी कैसी कैसी, है ना। इसमें कितने ऐसे लोग भी होंगे जो नामी लोग होते थे, जिन्हें अगर मान लीजिए सही परिस्थिति होती तो शायद उनके फ्यूनल में, उनके उस दहन क्रिया में बहुत लोग होते थे, है ना। पर वो क्या कह रहा है, ठीक है चलिए, ये तो उपाय है। सुलेमान उस समय मनुष्य को उद्धार के जीवन के बारे में और मनुष्य के जीवन के बारे में कुछ और नहीं जानता था, कह रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि अगर ऐसा व्यक्ति है जिसके पास बहुत कुछ संसारिक रीति, क्यों, क्या था उस समय जितने संतानें किसी के पास होती थी उतना उसका नाम माना जाता था, जितनी जितनी संतान होती थी उसको उतना अधिक धनी माना जाता था, उसको उतना अधिक बलवान माना जाता था, उसको उतना अधिक उसकी प्रसिद्धि मिलती थी। अरे इनके पास 15 बेटे हैं, इनके पास 7 बेटे हैं, इनके पास 10 बेटे हैं, तो इतना अधिक, अर्थात उसके पास अगर इतनी संतानें हो गई, इतने पुत्र हो गए कि उसका नाम बहुत हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी वो आनंद नहीं उठा पा रहा है तो क्या लाभ है, क्या लाभ है, संतानें उसको आनंद नहीं दे पा रही हैं, कुछ और उसको आनंद नहीं दे पा रहा, तो लाभ क्या है। तो क्या कह रहा है, ऐसी दशा में उससे अच्छा गर्भपात का बच्चा है, जो कई बार आप जानते हैं कि बेबी न्यूली जन्म लेने से पहले जैसे ही माँ के गर्भ में आते हैं और कई बार उनका गर्भपात हो जाता है, बहुत सारी स्थितियाँ समाप्त हो जाती हैं, उनकी जीवन समाप्त हो जाता है, वो उसके तुलना कर रहा है ऐसी दशा में। वो कह रहा है ये सब कुछ अगर ऐसा है तो कह रहा है क्योंकि वो व्यर्थ आता तथा अंधकार में विलीन हो जाता है, इतना सब कुछ होने बाद में उसने संसार में रह करके संसार की किसी प्रकार की भौतिकवादिता का आनंद नहीं उठाया, उठा सका, चाहे किसी भी कारण से, चाहे किसी कारण। मेरे प्रिय एक बात को जान लीजिए, परमेश्वर परमेश्वर है, परमेश्वर हमें हर एक प्रकार की आशीष देता है, ये जरूर है। भौतिकवादिता हमारे लिए प्राथमिकता नहीं है, संपन्नता हमारे लिए प्राथमिकता नहीं है। हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे इसलिए नहीं चलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमें बहुत अधिक धन बना देगा, या प्रभु यीशु मसीह हमें हमारे बहुत अच्छे हमारे व्यवसाय को बहुत बढ़ा देगा, या प्रभु यीशु मसीह हमें बहुत अच्छा चंगा कर देगा। बीमारी हमारे पर भी आएगी, अभी आंटी को ऑपरेशन में से होकर निकल के आना पड़ा है ना, हम में से कितने लोग हैं, हर एक जन है। बीमारी हमारे पर अभी भी आएगी, आ सकती है ना, हमारे काम में अभी भी घाटा पड़ सकता है, हमारे व्यवसाय में घाटा पड़ सकता है। पिछले दिनों में कुछ हमारे कलीसिया के लोग हैं, बेचारों का होटल बंद रहा 2-2 महीने, उनके लिए कितनी कठिन स्थिति आ गई, 2-2 महीने होटल बंद है, जिसके रोज कमाना रोज खाना। सो ये सारी परिस्थितियों में होगा, लेकिन ऐसे समय में जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया, प्रभु की शांति उनके साथ बनी रहेगी, प्रभु का आनंद बना रहेगा, और प्रभु किसी न किसी रीति से उनके जीवन का उपाय करेगा, करेगा उपाय उनका, उनको भूखा नहीं सोने देगा, प्रभु उपाय करेगा। मेरे प्रिय परमेश्वर वचन कहता है, क्योंकि उनका उनका जीवन केवल संसार की धन संपत्ति में नहीं। अब हमारी प्राथमिकता संसार की धन संपत्ति नहीं है, हमारी प्राथमिकता उस संपत्ति पे है जो इस संसार के बाद है, और वो स्वर्गीय संपत्ति है जो कभी ना समाप्त होगी, जो कभी ना मिटेगी, जो महान पवित्रता है, परमेश्वर की महिमा है, जिसमें हम भरपूर नहीं पाएंगे। ये जीवन तो है, लेकिन सुलेमान तुलना कर रहा है और तुलनात्मक कह रहा है कि अगर मनुष्य केवल इसी चीज रहकर भी वो नहीं प्राप्त करने पाता तो बेकार है, तो बेकार है। और कितने आज भी संसार में हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते, लेकिन कितने बार इसी प्रयास में रहते हैं कि उनका धन बढ़ जाए, उनका ये बढ़ जाए, उनका ये बढ़ जाए, उनका बैंक बैलेंस ये सब बढ़ जाए। सो इधर ध्यान दीजिए, तो तब यह है, तब अच्छा होगा कि वो, और बिना परमेश्वर तो बेकार है। और वो कह रहा है कि ऐसा उसका नाम अंधकार में छिप जाता है। आप ये बात को बता के, नाम जो है वो नाम, अभी अब आगे चल के देखेंगे उसके बारे में कैसे दिया, लेकिन मनुष्य के मरने के बाद कितने दिन कोई याद करता है? आप में से कितने हैं जो अपने परदादा के बारे में जानते हैं? शायद दादा को देखा इसलिए वो याद है, लेकिन परदादा को आपने नहीं देखा तो उनके बारे में क्या, जो कुछ माता पिता ने बता दिया बता दिया, यदि उनको याद है बता दिया, उनकी चर्चा भी नहीं होती। मैं अपने दादा को याद करता हूँ, उनकी बातों को जो हमने सुनी है वो याद करता हूँ किस रीति से, उससे पहले के कोई घटना का नहीं मान मुझे, और कितना कुछ दिन बाद वो भी, मैं इस संसार में मरने के बाद 2-3 पीढ़ी 2 पीढ़ी याद रखेंगे, उसमें 3-4 पीढ़ी क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, है ना। सो मनुष्य का नाम हमेशा हमेशा बना नहीं रहता, लेकिन हमारा नाम कहाँ बना रहेगा, ऊपर बना रहेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हें एक नया नाम दूंगा, एक नया नाम दूंगा। अब सुलेमान से बढ़कर हमारे पास है, सुलेमान की परिस्थिति से बढ़कर हमारे पास है, है ना, वो तो ये इस प्रकार से। तो हमारी जो खोज होनी चाहिए, केवल वो खोज नहीं होनी चाहिए कि जो संसारिकता में मुझे संतुष्टि मिलती है, जो संसारिकता में धन समय मुझे भरपूरी मिलती है, वो खोज नहीं है। मेरी खोज हुआ है जो उससे बढ़ करके परमेश्वर देना चाहता है, वो खोज है। अब हम फर्क हो गए, इसलिए मैंने कहा था कि वर्तमान हमारा फर्क है। ये जब लिखा जा रहा था तो 3,000 साल हो गए, वो समय परिस्थिति फर्क थी, अब हमारा वर्तमान अलग है, लेकिन जरूर मनुष्य का नाम। तो वो कहना चाह रहा है कि चाहे हमारे पास 100 बच्चे हो जाएं, चाहे हमारे पास कितने संतानें हो जाएं, चाहे हमारे पास सब कुछ हो जाए कैसे, लेकिन फिर भी हम अगर हमारा जीवन अंधकार में रहे तो क्या फायदा। और मेरे प्रियो एक बात है मेरे और आपके लिए, प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको अंधकार के जीवन से निकालने के लिए आए। उसने कहा मार्ग जीवन सत्य में, उसने कहा जगत की ज्योति में, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी भी अंधकार में ना रहेगा। प्रभु में आकर के हमारा अंधकार का जीवन समाप्त होता है, तब हमें एक नई आशा मिलती है, तब हमारा एक नया संबंध होता है, तब हमारे लिए मृत्यु कुछ और मतलब नहीं होती, तब हम मृत्यु के कारण निराश नहीं होते, तब मृत्यु हमारे लिए कुछ और लगती है, मृत्यु हमारे लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमारा ट्रांसफर हो रहा है, हम इस संसार को छोड़ करके उस स्थान पर जाते हैं जो अनंत का स्थान है। अभी पिछले दिनों में हमारे कुछ प्रिय लोग संसार से चले गए, दुखी बात है, हम आज भी स्मरण करते हैं, हमारे अच्छे जन थे, हम उनको खोते हैं, स्मरण करते हैं, हमने उनको खो दिया कि परिवारों ने, पेड़ ने खो दिया, लेकिन वो इस संसार से उत्तम स्थान में पहुंच गए, परमेश्वर उनको उत्तम स्थान पहुंचा दिया, ये हमारी धन आशा है, अब अंधकार में नहीं। तो सुलेमान कहना चाह रहा है ये है। तीसरी बात वो क्या कहता है पांचवें पद से, वो सूर्य को कभी नहीं देख पाता और ना कभी कुछ जान पाता है, वो कहता चाहे वो मनुष्य 2000 वर्ष बीजिए, असंभव, असंभव बात, 2000 वर्ष बीजिए परंतु उत्तम वस्तुओं का उपभोग ना करने पाए तो क्या सब एक ही स्थान पर नहीं जाते। अब वो कह रहा है व्यक्ति कोई भी क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति क्यों, चाहे उसके 100 पुत्र हो, चाहे उस 2000 वर्ष जिए, चाहे वो जैसा भी हो, कोई भी हो, सुलेमान खुद 100 वर्ष नहीं दिया है ना, 80 और 90 वर्ष के बीच की आयु में सब संसार से चला गया, वो चला गया वो है ना। और कहा जाता है कि जब वो ये लिख रहा था तो लगभग वो 80 वर्ष की आयु में था, इसी के बाद कुछ समय बाद को छोड़ के चला गया है ना। तो ये कह रहे हैं, तो जब ये है तो चाहे कुछ भी हो, कह रहा है मनुष्य का सब परिश्रम उसके पेट के लिए होता है, मनुष्य। अब आपको मालूम है फिर भी उसका जी नहीं भरता, कह रहा है मनुष्य का परिश्रम उसके पेट के लिए होता है फिर भी उसका जी नहीं भरता। संसार की चीजें मनुष्य को संतुष्ट नहीं करती। मैंने उस दिन बताया था आपको, किसी व्यक्ति ने कहा कि और तुम्हें धनवान बनने के लिए, तुम्हारे पास बहुत कुछ है, बहुत धन है, लेकिन और धनवान बनने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, उसने कहा लिटिल मोर, थोड़ा सा। और ये थोड़ा सा और कभी समाप्त नहीं होता, ये थोड़ा सा और कभी समाप्त नहीं होता, थोड़ा सा और मिल जाए बस काफी है, बस मैं कभी समाप्त नहीं होता। सो मनुष्य के हृदय में चाहे जैसी भावना क्यों ना, कुछ भी हो, चाहे जो कुछ भी है, वो कह रहा है जो कुछ भी है उसका जीवन परमेश्वर के बिना सब बेकार है, उसकी चिंताएं, उसका परिश्रम, उसकी लंबी आयु, उसके सब कुछ सब बेकार है। वो क्या कहता है, वो कह रहा है कि उसने अपने लिए सब कुछ करा, अपने लिए क्या, चाहे वो मनुष्य 2000 वर्ष जिए प्रति उत्तम वस्तुओं का उपभोग ना करने पाएगा तो क्या लाभ, मनुष्य का सब परिश्रम उसके पेट के लिए, अपने पेट के लिए, उसने किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचा, उसने दूसरे के जीवन में नहीं इन्वेस्ट किया, दूसरे के जीवन में इन्वेस्ट नहीं किया। आप सोचिए कि आप कितना दूसरे के बारे में सोचते हैं, कितना अधिक दूसरे के लिए आप धन खर्च करते हैं, आजकल कितना पैसा जानवरों के लिए खर्चा किया जाता है, पेट को पाल रहे हैं, कुत्ते को पाल रहे हैं, बाइबल में 8 रेफरेंसेस कुत्तों के लिए हैं और 8 रेफरेंस कुत्तों को अच्छा नहीं माना गया। और सच बता रहा हूं मैं, मैंने अपने जीवन में देखा जितने लोग ज्यादा कुत्तों को पालते हैं उनकी खोपड़ी घूम जाती है, वो इंसान से कम प्यार करने लगते हैं, जानवर से ज्यादा का प्यार कर लेते हैं, इंसान से कम। मेरे प्रियो, इंसान से अगर आपको प्यार करना है तो इंसान के लिए इन्वेस्ट करना है। अगर आपके परिवार में संतान है, किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लीजिए, बच्चों को अडॉप्ट करना पाप नहीं है लेकिन अच्छा है। मुझे नहीं मालूम, मैंने अपने माता पिता को नहीं देखा क्या उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया, क्या करा, कैसे करा, पाला पुलना, आज प्रभु का धन्यवाद मैं इस संसार में जीवित हूँ, जो कुछ मैं कर पा रहा हूँ। कितने ऐसे लोग हैं। तो मनुष्य केवल अपने बारे में सोचता है फिर भी उसका जी नहीं भरता। मैं कई बार लोगों को बोलता हूं कि आप अगर पड़ोस में एक गरीब बच्चे को देखते हैं, उस परिवार में आप अपने ऊपर बहुत पैसा खर्चा करते हैं, अपने बच्चों उसके, वो बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, घर में पूछे उसे भाई बेटा, भाई बेटिया स्कूल क्यों नहीं जा रही है, क्यों नहीं जा रही, हम 200 रुपये महीना फीस नहीं दे सकते, तुम इसको स्कूल भेजो, हम इसको 200 रुपये फीस देंगे लेकिन तुमको हमारी बात माननी होगी, इसको स्कूल में पढ़ाना होगा, इसको ऐसे करना। आप उस बच्चे को लेकर उसके साथ पर नहीं मालूम कल वो बच्चा किस प्रकार से बड़ा होगा, क्या करेगा। आपने क्या कहा, आपने जीवन में इन्वेस्ट किया। मेरे प्रियो, धन्य है वे कई लोग ऐसे हैं जो अन्य जाति प्रभु को नहीं जानते फिर भी लोगों को इन्वेस्ट करें, कई लोग ऐसे जो प्रभु को जानते हैं खासतौर से विदेशों में प्रभु को जाने वाले लोग अधिकतर लोगों को, बच्चों को गोद लेकर के अडॉप्ट करके उनको पालते हैं, उनको बढ़ाते हैं। ये अच्छी बात है। मनुष्य को केवल अपने लिए नहीं सोचना। आप जितना अपने लिए सोचेंगे आपका जी कभी नहीं भरेगा, आपको उससे संतुष्टि नहीं मिलेगी। लेकिन आपको अपने साथ साथ किसी दूसरे के बारे में सोचना है, किसी दूसरे को संभालना है, और ये परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करना है। कितने लोग हैं, मैं कई बार बच्चों से कहता हूं, जवान बच्चों से, आपके घर के आसपास कई सारे जवान बच्चे घूमते रहते हैं इधर उधर। हम जब कैंप करते हैं, यूथ कैंप करते हैं, तो यूथ कैंप में कई सारे जवान बच्चे आते हैं, और मैं एक बार पढ़ाते पढ़ाते मैंने बच्चों को कहा, दो बच्चे यहाँ से गए भदोही में, एक का नाम आनंद था, एक का नाम दूसरा, और वो समय इंटर करके बीए में गए थे, और उनको प्रभु ने साहस दिया, उन्होंने जा करके अपने गाँव में बच्चों को पढ़ाना शुरू करा। तब उन्होंने बताया कि अंकल धीरे धीरे 10 बच्चे थे, अभी 30 से 35, हम किसी से कुछ नहीं लेते, किसी कुछ नहीं लेते, लेकिन जरूर नीचे बैठा के पढ़ाते हैं, और फिर धीरे धीरे किसी ने मदद करी, चटाई बिछाई, ये करा वो करा, और उन बच्चों को पढ़ाना शुरू करा, है ना। हमने क्यों ये क्या नाम प्रोजेक्ट शुरू करा जिसमें हम 150 बच्चों को संभाल रहे हैं, या जगह जगह हम नॉन फॉर्मल क्यों चलाते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने हमें बोझ दिया है कि हम दूसरों के जीवन में इन्वेस्ट करें, दूसरों के जीवन में इन्वेस्ट करें, और ये परमेश्वर का वचन सिखाता है। सुलेमान उस समय, लेकिन हम 3000 साल बाद की बात करें, प्रभु ने तो और अधिकाई से हमें सिखाया है, पौलुस ने और अधिकाई से सिखाया है, वचनों ने और अधिकाई से सिखाया है, लेकिन हमारा कंसर्न जो है लोगों के लिए होना चाहिए, लोग बचाए, अपने परिवार को संभालना है। अब ये मतलब नहीं कि अपने परिवार को आप तिरस्कार दें, भैया मुझे दूसरों की चिंता है, पहले आपको अपने परिवार को संभालना है, और तब उसके साथ साथ आप दूसरों को संभालें। आप परिवार को न तुच्छ जानिए, परिवार को न तिरस्कारिए, है ना, वो भी आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि किस प्रकार से अगर परमेश्वर ने आपको 2 संतान 3 संतान 4 संतान, आपको कैसे उनको संभालना है, उसको सीखना है। ये अलग विषय है जिस पर हम जाते हैं, पर यहाँ पर इस बात को कहना चाह रहा है। 8 और 9 पद में वो कहता है, 8-9 पद में वो कह रहा है, बुद्धिमान व्यक्ति मूर्ख से किस बात में बढ़कर है, किसी गरीब को ये कहकर कि जीवितों के सामने कैसा व्यवहार करे क्या लाभ। आंखों से देख लेना मन की अभिलाषा करने से उत्तम है, ये है कि व्यर्थता तथा बाहु को पकड़ने का है। आंखों से देख लेना मन के अभिलाषा करने से उत्तम है। हमने किसी चीज को आंखों देख ले, मन में हमारी अभिलाषा बहुत हो रही है, हमने आंखों से देख के उसको इग्नोर कर दिया, नहीं, वो अभिलाषा जो सही अभिलाषा है उसको पूरा करने के लिए हमें करना है। किसी ने एक कहावत कही है कि दौड़ते हुए दूध पीने से अच्छा है खड़े होकर पानी पीना। यह साउथ में कहावत की जाती है, दौड़कर दूध पीने से अच्छा है खड़े होकर पानी पीना। क्या मतलब है, आपके हाथ गिलास है और दौड़ करके आप उसको पीना चाह रहे हैं, दूध को नहीं पी पाएंगे, दूध गिरता चला जाएगा। खड़े होकर के आपके पास केवल एक गिलास पानी है, उसको पिएंगे, वो ज्यादा आपके लिए फायदायक होगा। दूध महंगा है, दूध कीमती है, सब कुछ है, लेकिन उसको दौड़ करके आप पी ले, वो आपको कोई लाभ नहीं हो रहा है, आपके मुंह में नहीं जा रहा, गिर जा रहा है। लेकिन केवल अगर पानी आप खड़े होकर पी लेंगे, वो भी आपको लाभ पहुंचाएगा। वो कह रहा है, बुद्धिमान और मूर्ख दोनों एक ही समान है। यदि किसी गरीब से उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, अगर एक बुद्धिमान या कोई भी व्यक्ति गरीब के साथ उसका व्यवहार अच्छा नहीं, तो अभिलाषाएं बहुत सारी वस्तुओं की जा सकती है, ऊंचा पद, बहुत धन, संपत्ति, वैभव, नाम आदि आदि के मन में चाहना रखना, परंतु उसे प्राप्त ना कर पाना, परंतु कुछ को आंखों से देख लेना ही काफी है। सब वस्तुओं को प्राप्त करने की चाहना रखना लोभ को बढ़ाएगा, लालच को बढ़ाएगा, ये भी मिल जाए, 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 ये जो लोभ है धीरे धीरे लोभ को बढ़ा, और जब लोभ बढ़ता जाता है तो हमारी जो संतुष्टि है वो समाप्त होती चली जाती है, वो संतुष्टि समाप्त हो जाती है, और वो हमारे लिए खतरनाक हो जाती है, वो हमें किसी न किसी बंधन में बांध देती है। और इसलिए मुझे और आपको सावधान रहना है, जीवन को एक सच्चे और एक अच्छे कुम्हार की आवश्यकता है। परमेश्वर हमारा कुम्हार है, वो हमारे जीवन का निर्माण कर रहा है। मट्टी कुम्हार के हाथ में अपने आप को दे देती है, और कुमार उसको बनाता है। मट्टी लड़ती नहीं है, मट्टी झगड़ती नहीं है, मट्टी ऐंठती नहीं है। मट्टी ये नहीं कहती नहीं मुझे ये रूप नहीं, ये रूप चाहिए, मुझे ऐसा नहीं ऐसा बनाना है, वो नहीं कहती। लेकिन कुमार अपने आप जैसी मट्टी है उसको बना बना के अपने बनाना, और वो दूसरे के लिए होता है, और वो पात्र बहुतों के लिए आशीष का कारण बनता है। हमारा जीवन परमेश्वर के हाथ में इस प्रकार से होना है कि परमेश्वर हमारे जीवन को निर्मित करे। अभिलाषाएं बहुत सारी हमारे अंदर है, केवल अभिलाषाएं करना, किसी गरीब को देख करके अरे यार ये गरीब है बेचारा, मैं इसकी किस तरह से मदद कर सकूं, मेरे पास जेब में 100 रुपए हैं, मेरे पास अगर पैसा होता मैं जरूर दे सकता था, मैं इसके लिए कर दूंगा। भाई 100 रुपए हैं, 5 रुपए दे दीजिए आप उसको, तब तो कर सकते हैं। अब ये मतलब नहीं कहना चाह रहा हूँ कि आप खुद भिखारी बन जाइए और भीख मांगिए, नहीं ऐसा नहीं। कई बार लोग ऐसे भी दयालुता दिखाते हैं कि आप दूसरे को दे देते हैं फिर दूसरे से उधार मांगते हैं, वो ना करिए, समझदारी का काम करिए, बुद्धिमानी का काम करिए। तो ये है परमदे। अंतिम बात छठे 6-7 पद में, काफ़ी आगे है लेकिन मैं जल्दी से समाप्त करना चाहूँगा, जो 6-7 अध्याय के 10 पद से। परमेश्वर सार्वभौमिक परमेश्वर है, परमेश्वर सार्वभौमिक परमेश्वर है, जो अस्तित्व में उसका नाम रखा जा चुका है, और ये भी ज्ञात है कि मनुष्य क्या है। मनुष्य क्या है, आप देखिए पहली चीज था मनुष्य का नाम, आदम का नाम परमेश्वर ने रखा, और उस समय संस्कृति ये थी कि जो नाम रखा रखता था वो व्यक्ति उस व्यक्ति पर प्रभुता करता था, और इसलिए परमेश्वर ने आदम का नाम रखा है, और इसलिए वो परमेश्वर आदम पर प्रभुता करता है, इसीलिए सार्वभौमिक परमेश्वर है। आरंभ से हम आदम पर परमेश्वर की प्रभुता को देखते हैं। अब ये मनुष्य के हाथ में है कि मनुष्य कई बार परमेश्वर की प्रभुता को ठुकरा देता है, उसको स्वीकारता नहीं है, ठुकराता है उसको। मनुष्य को नम्र होकर दीन होकर उसको स्वीकार करना चाहिए, लेकिन वो क्या कह रहा है, जो उसका नाम रखा जा चुका है, ये ज्ञात है कि मनुष्य क्या, मनुष्य क्या है, मनुष्य कुछ नहीं है, मनुष्य एक बाप के समान है, जो सुबह मनुष्य एक ओस के समान है, थोड़ी देर दिखाई देती है तो समाप्त हो जाती है, बाप कुछ देर में समाप्त हो जाती है, एक घास के समान है जो सुबह दिखाई देती है शाम को सूख जाती है। और बाइबल में दाऊद है, अय्यूब है, ये सारे लोग बहुत जगह मनुष्य की तुलना करते हैं, मनुष्य क्या है, मनुष्य कीड़े के समान है, मनुष्य कुछ नहीं है। मेरा और आपका जीवन परमेश्वर के बिना कुछ नहीं है। हम अभी घमंड से बहुत कुछ बोलते हैं, निकलते हैं और उसके बाद संसार से चले जाए, हमें नहीं मालूम, ना तो जन्म के समय का किसी व्यक्ति को मालूम है, ना मृत्यु का मालूम है। जन्म का समय का डॉक्टर कुछ भी टाइम दे सकते हैं, लेकिन मनुष्य उस टाइम से नहीं आगे पीछे हो जाता है, उसके हाथ में। मरने का डॉक्टर कुछ भी कहते हैं लेकिन मनुष्य आगे पीछे मरता है। हाँ वो कहेगा भैया 5 घंटे इसकी लाइफ है, 1 घंटे लाइफ है, लेकिन टाइम पक्का नहीं बता सकता। पर जीवन देने वाला परमेश्वर है। मनुष्य क्या है, मनुष्य कुछ नहीं है, और मुझे और आपको देखना, मैं क्या हूं बिना प्रेम मेरे परमेश्वर के, मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरा जीवन व्यर्थ है। मुझे परमेश्वर को खोजी होना है, मुझे परमेश्वर के साथ चलना है, मुझे परमेश्वर की आवश्यकता है। बिना परमेश्वर के मेरा जीवन बेकार है, मैं अपने आप में कुछ नहीं कर सकता। ये मिथ्या है कि तुम सब कुछ कर सकते हो। कई विचारधारा के लोग हैं, कुछ लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, अब उसको मनुष्य की चिंता नहीं, अलग अलग विचारधारा के, है ना। नहीं, परमेश्वर मेरे और आप में रुचि रखता है, चिंता करता है, और इसीलिए तो उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा है। और वो आगे चल के कहता है, क्योंकि वो उससे नहीं लड़ सकता जो उससे अधिक सामर्थी है। मनुष्य परमेश्वर से नहीं लड़ सकता, परमेश्वर से वाद विवाद नहीं करता। हे परमेश्वर, ये बीमारी मेरे पर क्यों आ गई, ये मृत्यु क्यों आ गई, ये घटना क्यों घट गई। भाई आनंद चौधरी एक बहुत बड़े प्रभु के सेवक थे, प्रभु में जब विश्वास में आए उनको घर वालों ने निकाल दिया, और निकाल दिया झांसी के प्लेटफॉर्म पे, कागज बिछा के सोते थे, कई दिन तक उसी में रहते थे और इस रहते। पर प्रभु का कोई जन मिल गया, उनको अपने साथ ले गया, धीरे धीरे प्रभु के बहुत बड़े सेवक बन गए, अभी तो संसार से चले गए। 3-4 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई, और राजस्थान में उनके बहुत बड़ी सेवा, और जो अपने बहुत पहले गीत सुनते होंगे वंदना करते हैं हम, जो रेडियो में सुबह से 6:45 बजता था, वो उसमें जो प्रचार करते थे वही थे भाई आनंद चौधरी। बहुत साल तक उन्होंने उस रेडियो में प्रचार किया। उनके माँ और बहन इन्होंने उस समय विश्वास के लिए था, माँ जान गई थी कि इन्होंने विश्वास कर लिया, घर वालों ने सब ने विरोध किया था, माँ और बहन एक ही साथ 1954 में कुंभ के मेले में हरिद्वार में भीड़ भागी, नीचे गिर गई और दब के मर गई। कई लोग मरे थे उसमें, उनकी माँ भी थी इनकी बहन भी थी। पर वो कहते हैं कि मैंने कभी भी परमेश्वर से नहीं कहा कि परमेश्वर ऐसा क्यों हुआ, मैंने कभी परमेश्वर पर, मेरे पास क्या अधिकार है, मैं इतना जानता हूँ परमेश्वर जो कुछ करता है वो सब कुछ भला करता है, जितने परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। हम परमेश्वर से प्रश्न नहीं कर सकते, हम परमेश्वर से वाद विवाद नहीं कर सकते, हम परमेश्वर से लड़ नहीं सकते। हाँ, एक संबंध होने के साथ हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, आग्रह कर सकते हैं, है ना, जरूर, एक पिता पुत्र होने के नाते, पुत्री होने के नाते हम बातचीत कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो एटीट्यूड है, हमारा विचारधारा है, तरीका है, वो क्या है? कई बार प्रश्न भी करते तो लड़ने के लिए कारण नहीं करते, समझने के लिए करते, जानने के लिए करते। हम लड़ नहीं सकते, हम उसे वाद विवाद नहीं करते, इसलिए कह रहा है मनुष्य क्या है, 11 पद में कहता है, कहता हूँ वो अधिक सामर्थ्य, परमेश्वर अधिक सामर्थ्य है, बहुत से शब्द ऐसे हैं जो निरस्तार को बढ़ाते हैं, तो फिर मनुष्य को क्या लाभ, मनुष्य को क्या लाभ, कौन जानता है कि मनुष्य के लिए उसके जीवन काल में अर्थात उस व्यर्थ जीवन में कुछ दिनों के लिए क्या अच्छा है, उनको वो छाया के समान बिता देगा। मनुष्य को कौन बता सकता है कि उसके बाद सूर्य के नीचे क्या होगा, केवल एक जन बता सकता है, परमेश्वर जानता है। मैं जब HL छोड़ रहा था तो उस समय में मेरे ऑफिसर ने मुझसे पूछा, मेरा सबके सामने मेरा फेयरवेल हो रहा था, और मेरे सुपरवाइजर ने कहा कि रॉली तुम तो अच्छा काम कर रहे हो, नौकरी छोड़ रहे हो, इस HL को छोड़ रहे हो, कल तुम्हारी बेटी का क्या होगा, वो तो 6 महीने की है, आगे बढ़ेगी, पढ़ाई का क्या होगा, शादी का क्या होगा। मेरे मुँह से एक ही बात निकली थी, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं अपने कल को नहीं जानता, लेकिन मैं उसको जानता हूँ जो मेरे कल को जानता है, मैं अपने कल को नहीं जानता लेकिन मैं उसको जानता हूँ जो मेरे कल को जानता है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, प्रभु ने मेरे सर को नीचा नहीं होने दिया, मैं उसको जानता हूँ, मैं अपने कल को नहीं जानता लेकिन मैं उसको जानता हूँ जो मेरे कल को जानता है, और वो सच्चा परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है। आप अपने कल को नहीं जानते लेकिन आप उसको जानते हैं जो आपके कल को जानता है। क्या करना है आपको, आपको और अधिक उस पर निर्भर होना है, और अधिक आपको उसकी निकटता में आना है, और अधिक आपको उसकी बुद्धि खोजना है, उसकी समझ को खोजना है, और अधिक उसकी सामर्थ को खोजना है। ये संसार की चीज़ें मुझे और आपको जीवन प्रदान नहीं करती, ये कुछ समय के लिए, थोड़े देर के लिए आवश्यक हो सकती है, आवश्यक होते, लेकिन परमेश्वर सब कुछ है। सो प्रभु मदद करें, प्रभु सहायता करें कि सचमुच में कि मैं और आप उस परमेश्वर के खोज हो सके जो परमेश्वर हमारे कल को जाने वाला है। परमेश्वर के भक्तजन इस बात को कहते हैं, सुलेमान ये सब उपदेश लिख रहा था, तो लिखते लिखते उसकी खोज, उसकी शोध जो थी, लिखते लिखते उसको पुनः परमेश्वर के पास वापस ला रही है, और जब वो अंत में पहुंचता है तो पुनः वो परमेश्वर के पास लौट आता है, और जान लेता है बिना परमेश्वर के कुछ नहीं, अभी परमेश्वर से दूर है, अपने ज्ञान से अपनी बुद्धि से बात कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो परमेश्वर के पास आ जाता है और तब उस बात को लिखता है। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें, और आज हमने इस बात को देखा, तो अन्याय से कोई प्रश्न नहीं होता, मैं प्रश्न नहीं होता अपने में, लेकिन हमारे को अन्याय से बचाने वाला परमेश्वर है, और अन्याय का समाधान करने वाला परमेश्वर है, इसलिए हमें मनुष्य पर नहीं लेकिन परमेश्वर पर ज़्यादा से निर्भर होना है। आइए हम प्रार्थना।